जय यमुना तीरवन चारे जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकचार्योऽष्टावदरोक्ति श्रीमद् हिज डिवाइन ग्रेशियस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की इस्कॉन विपिड संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकचार्योऽष्टावदरोक्ति श्रीमद् हिज डिवाइन ग्रेस श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार शिल हरदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नितानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड श्री गिरि गोवर्धन की ब्रज भूमि श्री वृंदावन धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र से जगन्नाथपुरी धाम की नवद्वीप मायापुर धाम की गंगा माई जमुना माई की भक्ति देवी तुलसी महारानी की कलयुग पावन हरिनाम संकीर्तन की हरे कृष्ण महामंत्र की जय श्री श्री भगवान लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की ताय गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड श्री गौरांग ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरंधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलयेन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो उपस्थित सभी भक्तों को आज के इस नरसिंह चतुर्दशी कार्यक्रम में हम हार्दिक स्वागत करते हैं। जय नरसिंह देव भगवान की। तो नरसिंह देव की स्तुति में हम लोग हर रोज नरसिंह आरती गाते हैं। नमस्ते नरसिंहाय, भगवान श्री नरसिंह देव को हम प्रणाम करते हैं। नमस्ते अर्थात मेरा कुछ नहीं सब आपका है। नमः शब्द का अर्थ क्या है? अहंकृति म कारस्यात् न कारत निषेधक तस्मात् तो नमसा क्षेत्री स्वातंत्र्यं परिपद्यजे स्वातंत्र्यं परित्यज्यते। नमः शब्द का अर्थ है कि अहंकार और ममता इन दोनों का हम पूर्ण त्याग करने का संकल्प करके जब भगवान के समक्ष अपने आप को प्रस्तुत करते हैं तो उसको कहते हैं नमः नमः। तो न शब्द अहंकार का प्रतीक है और म शब्द ममता का प्रतीक है। मैं और मेरा, इन दोनों का जब हम परित्याग करके तिलांजलि देकर भगवान के चरण कमलों में अपनी स्वेच्छा, अपनी स्वतंत्रता को जब हम समर्पित करें तो उसको कहते हैं नमः। तो स्वतंत्रता रत्न ये जीव का सबसे बहुमूल्य धन है और इस धन को जीव बड़े ही कठिनाई से दूसरे के सामने प्रस्तुत करता है। लेकिन भगवत भक्ति यही है कि हम अपनी इच्छा को, स्वेच्छा को, स्वतंत्रता को भगवान के सामने समर्पित करके परतंत्र होने का प्रयास करें। भगवत भक्तितः सर्वम इति उत्सृज्य विधेरपि कैंकर्यम कृष्ण पादैक आश्रयत्वम शरणागति। शरणागति शब्द का ये तीन परिभाषा दिया गया है कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त करने की अभिलाषा, दूसरा केवला भक्ति के माध्यम से, और तीसरा उस भक्ति के मार्ग में जो भी अड़चन बाधा आए उनको सर्वस्व हम तत्क्षण उनकी उपेक्षा करने के लिए तैयार हो जाएं, तो उसको कहते हैं शरणागति। सर्वलोक शरण्याय राघवाय महात्मने निवेदयत माम क्षिप्रम विभीषणम उपस्थितम। जब विभीषण अपनी शरणागति करने प्रभु रामचंद्र के समक्ष आए तो उन्होंने देखा कि सुग्रीव और बाकी सारे वानर सेना कुछ विलंब कर रहे हैं उनके इस प्रार्थना को स्वीकार करने में। तो विभीषण के मन में कुछ क्षोभ उत्पन्न हुआ, विषाद उत्पन्न हुआ और वो कहते हैं कि मैं असुर कुल में जन्म लिया हुआ रावण का अनुज विभीषण, हम असुरों के मन में भगवत भक्ति का भाव विरल ही उत्पन्न होता है और अब शरणागति की इच्छा जागृत हुई है, ये चिंगारी कब तक ज्वलंत रहेगी और कब बुझ जाएगी, काल के प्रभाव से इसका कोई भरोसा नहीं, इसलिए सर्वलोक शरण्याय राघवाय महात्मने, हे राघव संपूर्ण जगत को आश्रय देने वाले प्रभो, निवेदयत माम क्षिप्रम, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि शीघ्र अतिशीघ्र विभीषण जो आपके सामने खड़ा है उसको आश्रय प्रदान कीजिए। तो इसलिए क्षिप्रम शब्द का प्रयोग किया गया है कि जिस प्रकार भयंकर वायुवेग और बवंडर के बीच किसी अग्नि के दीपक को जलाना बड़ा कठिन है और अगर प्रज्वलित करने के बाद उसे चलाए रखना और अधिक कठिन है, उसी प्रकार जब जीव के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पण करने की भावना जागृत होती है वो उतना ही उसको पालना कठिन है और शीघ्र अतिशीघ्र उसको वैष्णव सत्संग में वैष्णवों के आशीर्वाद से उसको और अधिक बढ़ावा देने का प्रयास करना चाहिए। और ये हम देखते हैं कि भगवान नरसिंहदेव हमको इसमें सहायता करते हैं कि इस शरणागति के यात्रा में जो हमारे विविध प्रकार के अड़चने बाधाएं आए उनको नष्ट करने में सहायक बनते हैं, इसलिए हम उनके सामने समर्पित होकर कहते हैं अपने अहंकार को और ममता को आप नष्ट करने में सहायक बने, नमः ते, अर्थात हम नमस्कार कर रहे हैं आपको भगवान को। नरसिंह आय, अर्थात जो नर और सिंह दोनों का रूप लेकर उपस्थित हुए भगवान नर सिंह। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यता अति अद्भुत रूपमुद्वहन स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। तो भगवान नरसिंहदेव प्रकट हुए अपने भक्तों के वचन को संरक्षण करने, क्योंकि ब्रह्मा जी ने वचन दिए थे हिरण्यकश्यपु को तपस्या करने के पश्चात और उन वरदानों को पूर्ण करने, प्रहलाद महाराज ने वचन दिया था कि भगवान सर्वत्र विद्यमान है, भगवान इस स्तंभ के अंदर भी विद्यमान है और भगवान अपने भक्तों का संरक्षण करने तत्काल खड़ा हो जाते हैं। तो प्रहलाद महाराज के इस वाणी को, ब्रह्मा जी के वाणी को और जितने देवता थे उन लोगों की अपेक्षा थी कि भगवान आकर संरक्षण करेंगे और भगवान ने कहा था कि निर्वेराय प्रशांताय स्वसुताय महात्मने जब प्रहरादाय यदा द्रुहे धनिष्येपि वरोर्जितम। जब प्रहलाद महाराज जो के निर्वैर हैं, कर्म ज्ञान योग इत्यादि के मार्ग में हमेशा कोई न कोई स्पर्धा और द्वेष की संभावना बनी रहती है, लेकिन भक्ति में द्वेष की कोई संभावना नहीं रहती, क्योंकि हर भक्त के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनके हृदय में उनकी सहायता करने के लिए तैयार हैं। वही भगवान जो हमारे हृदय में है वो आपके भी हृदय में है और दूसरों के भी हृदय में है। और भगवान कहते हैं तेषाम सद्युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम, तो मैं आपको बुद्धि दूंगा, उनको भी बुद्धि दूंगा, उनको भी बुद्धि दूंगा, जो ये यथामाम प्रपद्यन्ते मेरे सामने समर्पित होगा उनको मैं बुद्धि देने के लिए तैयार हूँ। तो जगत की सबसे शक्तिशाली सत्ता हर तुच्छ जीव की सहायता करने के लिए क्षण क्षण तत्पर है। तो इसीलिए इतनी बड़ी सत्ता जब हर भक्त के पीछे लगी हुई है, तेषाम एवानुकर्त कंपार्थ महमज्ञानजम तमा नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वतः, हर व्यक्ति को लगता है कि हमारे जीवन में किसी शक्तिशाली व्यक्ति के साथ संपर्क स्थापित होगा तो जीवन सफल होगा, ऐश्वर्य से अभिभूत होगा, तो वास्तव में हर जीव को ऐसा सौभाग्य भगवत भक्ति के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के साक्षात व्यक्तिगत सानिध्य से हृदय के भीतर उपस्थित है। इसलिए किसी भक्त को किसी से वैर करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि सबसे शक्तिशाली सत्तारूढ़ी भगवान हर भक्त के सामने आग्रह कर रहे हैं कि आप मेरी ओर एक कदम लो, मैं आपकी ओर 100 कदम लूंगा, तो फिर भयभीत होकर भ्रमित होने की आवश्यकता ही नहीं। इसलिए ये भगवान जो कि ब्रह्मा जी, प्रहलाद महाराज और देवता इत्यादि को वचन दिए थे, इसलिए वो नर और सिंह दोनों के मिश्रित रूप में प्रकट हुए और इसलिए इनका नाम दिया गया है अति अद्भुतम रूपम उद्वहम स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम, ये न मृग हैं न मनुष्य हैं। भगवान ये कहना चाहते हैं कि आप लोग अपनी इच्छा शक्ति को पत्थर की तरह स्थिर बना देते हो, आप लोग अपने विचारों को अपने मतों को कभी कभी पत्थर की तरह फौलाद की तरह इतना कठोर बना देते हो कि आप किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं होते, और विश्व भर में जितने भी कोर्ट कचहरी में जितने भी केसेस चल रहे हैं वो इस बात का प्रमाण है कि दो आदमी अपने अपने मत पर इतना अडिग स्थिर हो गया, इतना जिद करने पर तुल गया कि अब मैं नहीं हिलूंगा, अपने मतों को परिवर्तित नहीं करूंगा, अपने विचारों को मैं नहीं हिलाऊंगा। हर एक व्यक्ति अपने मिथ्या अभिमान के वशीभूत अपने विचारों को इतना स्थिर कर देता है, इतना सशक्त कर देता है कि उसको हिलाना असंभव हो जाता है। लेकिन मुझे देखो, मैं सबसे शक्तिशाली सत्ता हूँ पूरे ब्रह्मांड की, लेकिन मेरा सबसे सुंदर श्याम सुंदर रूप होते हुए भी मैं भक्तों की इच्छा के सामने कठपुतली की तरह नाचकर क्षण भर में अपने रूप को परिवर्तित करके चाहे समाज में उसका उपहास हो या उपेक्षा हो या निंदा हो या कुछ हो, उसका विचार किए बिना केवल वैष्णव की इच्छा पूर्ण होनी चाहिए ऐसा सोच के अद्भुत रूप लेने के लिए तैयार हूँ। और आप कैसे अद्भुत हो, थोड़ा सा विचार बदलने के लिए आप लोग तैयार नहीं? स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम, नरसिंह रूप हम लोगों को चुनौती देता है कि मैं अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए क्या क्या अद्भुत कार्य करने के लिए तैयार हूँ, इतना लालायित हूँ, इतना लालची हूँ, मैं इतना कठपुतली की तरह नाचने के लिए तैयार हूँ। आप कितने बड़े मूर्ख हो कि वैष्णव इच्छा के सामने कठपुतली की तरह नाचने के बदले अपना अभिमानी छाती उठाकर कहते हो कि हम नहीं करेंगे। तो इसलिए स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम, भगवान नरसिंहदेव का रूप जो हमारे चर्म चक्षुओं से हमें दर्शन देता है, वास्तव में उनके तरल सरल और बड़े ही कोमल हृदय का परिचय देता है कि वो केवल देखते हैं कि भक्तों की इच्छा क्या है। एवं संदर्शिता ह्यंग हरिणा भृत्य वश्यता स्ववशेनापि कृष्णेन यस्येदं सेश्वरं वशे, नरसिंह देव का रूप देखने में विकराल भयंकर दिखता है और बड़े ही चीत्कार मारकर भगवान स्तंभ से प्रकट होकर हिरण्यकश्यपु को निर्मम रूप से हत्या किए, लेकिन उस भयावह बीभत्स लीला के पीछे भगवान के कोमल हृदय का परिचय है कि वो प्रकट क्यों हुए इस रूप में। केवल अपने 5 वर्ष के नन्हे से बालक पुत्र और भक्त प्रहलाद महाराज की इच्छा के अनुसार नृत्य करने, उस इच्छा के अनुरूप कार्य करने के लिए, अर्थात भगवान का हृदय जैसा कोमल है उनका भक्त बनना हो तो जिस फुर्ती के साथ भगवान वैष्णवों की इच्छा के साथ आदान प्रदान करते हैं उतनी फुर्ती के साथ हम लोगों को भी करना पड़ेगा, तभी हम भक्ति के गेम में रहेंगे। जिमनास्टिक में हम लोग उतर कर अगर बोले हम जिमनास्ट बनने उतरे हैं और कोच बोलेगा छलांग लगा और बोले नहीं डर लगता है, ये नहीं हो सकता, तो फिर गलत गेम में अपन उतरे हैं। इसलिए कौन से गेम में उतर रहे हैं और उस गेम में उतरने के बाद क्या करना पड़ता है उसकी जानकारी पहले होनी चाहिए, उसके बाद फिर गेम में उतरना चाहिए, नहीं तो बाद में लगेगा कि ये गलती कर दी। स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। हम लोग जगन्नाथ रथ यात्रा में थे और जगन्नाथ जी को हम लोग खींच रहे थे जगन्नाथपुरी में। इतनी भीड़ होती है कि ऐसा लगता है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध भूमि आ गया, लेकिन सभी लोग प्रेम से जगन्नाथ को खींचते हैं, लेकिन इतने प्रचुर मात्रा में लोग होते हैं कि उस जगन्नाथ जी के रथ के रस्सी को छूने के लिए कम से कम एक आधा घंटा लगता है कि हम लोग छू पाएं, और छूने के बाद भी 2 मिनट के ऊपर कोई स्पर्श करके रखा रहे तो इतना लात खाएगा कि पूछो मत। तो बलदेव जी का रथ में खींच रहा था और खींचते खींचते बहुत लाते खाते खाते हम लोग लास्ट तक पहुंचे और फिर सूर्यास्त लगभग हो रहा था, तो हम सोच रहे थे कि बहुत देर तक हम लोग खींच नहीं पाए एक ही साथ में। अचानक फिर हम लोग जब खींचे तो लगभग 4-5 मिनट तक खींचते ही चले गए और रथ रुका ही नहीं। ऐसा लगा कि खींचते जा रहे, अरे बड़ा आनंद आ गया ऐसा लगा। बाद में मालूम पड़ा कि पांडा लोगों ने रथ से रस्सी को ही निकाल दिया था और केवल हम रस्सी को उठा के भाग रहे थे। तो इसलिए जब हम भक्ति करते हैं तो भगवान तो शास्त्र में बहुत कुछ वचन बोल गए और भगवान हमको खींचने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अगर हम भगवान की इच्छा को हमारी इच्छा के साथ जुड़ने ही नहीं देंगे, भगवान की रस्सी कहाँ चलती रहेगी और हम लोग अपने धुन में चलते रहेंगे। तो इसलिए यहाँ भागवत में वर्णन आया है कि नेमम विरिंचो न भवो न शरीरप्य अंक संश्रया प्रसादे लेभिरे गोपी यत्त प्राप्य विमुक्तिदात। तो दामोदर लीला में यशोदा माई की स्तुति क्यों हुई है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनके भक्ति के वशीभूत आ जाते हैं। उसी प्रकार जब हर प्रकार के अहंकार से शून्य कोई भक्त भगवान को निस्सहाय भाव में पुकारे तो भगवान उनके इच्छानुरूप क्या कुछ करने के लिए तैयार नहीं हो जाते। कुलादि देवता मोरे मदन मोहन यार सेवक रघुनाथ रूप सनातन। मूर्ख नीच क्षुद्र मुई विषय लालस वैष्णव आज्ञा बोले करे एतेक साहस। श्री रूप रघुनाथ चरणेर ऐ बोल यार स्मृते सिद्ध होए वांछित सकल। तो कविराज गोस्वामी कहते हैं हमारे जीवन के सबसे बड़ा सौभाग्य ये होगा जब हम भक्तों की इच्छा के अनुसार उनको प्रसन्न करने का प्रयास कर सकें। और भगवान नरसिंहदेव प्रकट हुए हैं तो केवल वैष्णवों को संतुष्ट करने के लिए, प्रहलाद महाराज को, ब्रह्मा जी को, सभी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भगवान इस रूप में प्रकट हुए हैं। आगे बोलते हैं नमस्ते, अर्थात जब अहंकार को दमन करके जब हम भगवान को पुकारेंगे तो भगवान प्रकट होते हैं किसी किसी रूप में। प्रहलाद आह्लाद ददाई ने, और किस लिए आए हैं? प्रहलाद महाराज को प्रसन्न करने, संतुष्ट करने। नोद्विग्न चित्तो व्यसनेशु निस्पृह श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेषु अवस्तुद्रिक दांतेन्द्रिय प्राण शरीरधी सदा प्रशांत कामो रहिता सुरासुरा। तो प्रहलाद महाराज की अत्यंत अभिलाषा थी कि मैं केवल भगवान का निरंतर चिंतन करूं, कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो भगवान श्री कृष्ण का लोक गोलोक प्रहलाद महाराज के ऊपर पूर्णतः हावी हो गया और उसके वशीभूत आकर अनुसंधान उनको बाहरी दुनिया का नहीं था और दिन रात न्यस्त क्रीडन को भालो जड़वत्तन मनस्तया केवल भगवान श्री गोविंद का स्मरण करते हुए, भगवान के स्मरण में कितना आनंद है और इस जगत के हर प्रकार के भय से किस प्रकार की मुक्ति है, प्रहलाद महाराज का चरित्र इस बात को प्रदर्शित कर रहा है। और प्रहलाद महाराज निरंतर आनंदित रहते, क्यों? क्यों उनके मन के आनंद के पीछे मुख्य कारण क्या था? उनके मन में केवल एक ही भाव था, कैसे हम कृष्ण की इच्छा को पूर्ण करें, कैसे कृष्ण को संतुष्ट करें। निरंतर कृष्ण के संतोष का जिसके मन में चिंतन उमड़ पड़ रहा था, ऐसा व्यक्ति, ऐसा भक्त निरंतर प्रसन्न रहता है। इसलिए न उद्विग्न चित्तो व्यसनेषु, विविध प्रकार की बाधाएं आने पर भी वो केवल भगवान का चिंतन करते थे। क्योंकि जब हमारे जीवन में कोई संपत्ति का कारण आता है, हमको लगता है भगवान ने प्रसाद दिया, लेकिन विपत्ति का जब कारण आता है तब भी हमें देखना चाहिए ये भी भगवान का प्रेममय हस्ताक्षेप है। जब हाथ में प्रेम से लड्डू दे रहे हैं वो हाथ भगवान का है, और जब झापड़ पड़ा वो भी भगवान का ही हाथ है। इस दृश्य को देखने की शक्ति हमें शास्त्र देता है, और इसलिए प्रहलाद महाराज निरंतर प्रसन्न रहते थे। श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेषु अवस्तु दृक्, क्योंकि उन्होंने अपने माँ के गर्भ में ही श्रीपाद नारद मुनि की कृपा पात्र प्राप्त कर ली थी। नारद मुनि के वचनों को सुनकर प्रहलाद महाराज ने उनको अपना गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया था, और इसलिए एवं जन्म निपतितम प्रभवाही कूपे कामाभिकामम अनुय प्रपतन प्रसंगात कृत्वात्मसात सुरर्षिना भगवन गृहीत सोहम कथम नु विसृजे तब भृत्य सेवाम। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि भगवान नरसिंहदेव, आपने मुझे दर्शन तो दिए, लेकिन आपसे मुझे धन जन प्रतिष्ठा सत्ता ऐश्वर्य संपत्ति इत्यादि की कोई कामना अभिलाषा नहीं, मैं आपसे यही अभिलाषा करता हूं। एवं जन्म निपतितम प्रभवाही कूपे कामाभिकाम मनुय प्रपतन प्रसंगात, मैं भी इस जगत के लोगों के साथ साथ नरक में प्रवेश कर रहा था, लोक मत को ही जीवन का वास्तविक सत्य मानकर भ्रामक अवस्था में मैं अलग अलग नरक लोकों में बहुत बुरी तरह प्रताड़ित होता, लेकिन आपके प्रिय भक्त नारद ऋषि का मेरे जीवन में प्रेममयी हस्ताक्षेप हुआ, मेरे बिना निमंत्रण दिए बिना उन्होंने हस्ताक्षेप किया। ये नहीं कि मैंने उनसे निवेदन किया कि आप मेरे जीवन में आकर मेरे जीवन को परिवर्तित कीजिए, मेरे जीवन की दिशा बदलिए। वैष्णव गणों का हृदय इतना उदार होता है और करुणा का इतना सागर होता है कि वो बिना निमंत्रण दिए ही ऐसी औषधि पिलाते हैं कि बीमार व्यक्ति को मालूम भी नहीं होता कि वो बीमार है, फिर भी वो स्वस्थ हो जाता है। स्वस्थ होने के बाद वो समझता है कि मैं कितना बीमार था और वैद्य कितने कृपालु थे कि उचित समय पे मुझे औषधि दी। कामाभिकाम मनुय प्रपतन प्रसंगात कृत्वात्मसात सुरर्षिना भगवान गृहीत, ये नरसिंहदेव भगवान की कृपा मुझे क्यों हुई? क्योंकि नारद मुनि ने आकर मेरी माता को आश्रय दिया, उनको सेवा का अवसर दिया, मेरी माता को वैष्णव सेवा का अवसर प्राप्त हुआ, और उनकी सेवा करने के पश्चात मैं जो उनके गर्भ में स्थित था, नारद मुनि की कथाओं को जब मैंने सुना, मेरे हृदय के अंदर ऐसा परिवर्तन, ऐसी क्रांति आ गई, भगवत गति भक्ति क्या है उसका मुझे वास्तविक परिचय प्राप्त हुआ। कृत्वात्मसात सुर ऋषिना भगवन गृहीत सोहम कथम नु तब भृत्य सेवाम, मेरे मन में और कोई अभिलाषा नहीं, केवल मैं श्री नारद मुनि की सेवा करना चाहता हूँ। कृपा करके आप अपने दर्शन के पश्चात ऐसी व्यवस्था कीजिए कि मैं श्रीपाद नारद मुनि की निरंतर सेवा कर सकूं, क्योंकि उन्होंने मुझ पर इतनी कृपा की, लेकिन जितनी उन्होंने मुझे कृपा की उसके बदले में मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कभी सेवा नहीं कर पाया। क्योंकि जन्म के पश्चात तो हिरण्यकश्यपु और उनके परिवार के साथ ही मैं पला बड़ा हूं। डायरेक्ट नरसिंहदेव भगवान के दर्शन हो गए, भगवान के दर्शन हो गए, गुरु के अभी तक दर्शन नहीं हुए। कम से कम जिन गुरु ने मुझे ज्ञान दिया, उस ज्ञान के इतने बड़े ऋण को चुकाने के लिए सेवा का अवसर दीजिए। सोहम कथम नु विसृजे तव भृत्य सेवाम, इसलिए मैं कदापि नारद मुनि के चरण कमलों की सेवा नहीं छोड़ सकता। हे नरसिंहदेव भगवान, कृपा करके आप मुझे श्री नारद मुनि के चरणों की सेवा प्रदान कीजिए। तो इसलिए प्रहलाद महाराज प्रसन्न थे, क्योंकि उनको वैष्णव की कृपा हुई, और वैष्णवों की कृपा का परिणाम होता है कि हृदय के अंदर शुद्ध कृष्ण भक्ति करने की इच्छा जागृत होती है। जय और विजय ने अंदर प्रवेश करते हुए चतुष्कुमारों को रोका था, टोका था, और उसके कारण उन्होंने चतुष्कुमारों को क्रुद्ध किया था, और चतुष्कुमार क्रोधित होकर जय और विजय को अभिश्राप दिए, और वैष्णवों के और महान संतों के अभिश्राप और क्रोध का और कोप का परिणाम होता है कि हृदय के अंदर विभिन्न प्रकार की भौतिक इंद्र तृप्ति की वासनाएं जागृत होती हैं, और ये वासनाओं की ज्वालामुखी हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष के हृदय में उत्पन्न हो गई। तो इसलिए बाहर से लगेगा कि नरसिंहदेव और प्रहलाद इस संपूर्ण लीला के मुख्य पात्र हैं, लेकिन इस लीला के मुख्य पात्र हैं चतुष्कुमार और नारद मुनि। नारद मुनि के आशीर्वाद ने प्रहलाद महाराज के हृदय में कृष्ण भक्ति का दीप प्रज्वलित किया, और चतुष्कुमारों के अभिश्राप ने जय और विजय के हृदय में, हिरण्यकश्यपु के हृदय में अनंत कोटि इंद्र तृप्ति की भावना और अहंकार की भावना पैदा की, और इसलिए कभी भी वैष्णवों की सेवा करके उनको संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए, और उनका क्रोध और उनके कोप से घबराना चाहिए, क्योंकि उससे भौतिक इच्छा पैदा होती है। तो भौतिक इच्छाओं की उत्पत्ति का मूल स्रोत है वैष्णवों का क्रोध, क्रुद्ध होना, अगर हम ऐसे सत्संग में रहते हो तो। तो इसलिए प्रहलाद अहलाद दाई ने प्रहलाद महाराज निरंतर केवल सेवा की भाव में भगवान श्री नरसिंहदेव और वैष्णवों को प्रसन्न करने का भाव रखते थे, इसलिए निरंतर प्रसन्न रहते थे। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के लिए उनके एक पांडा जी ने एक कुछ सुंदर सा एक भोग तैयार किया। जगन्नाथ स्वयं उस पांडा के स्वप्न में आकर उनको बोले, इस तरह का तुम ये सब अलग अलग आइटम को मिश्रित करके ये लड्डू बनाओ, मेरे खाने की इच्छा है। तो जगन्नाथ जी उनके स्वप्न में आकर जैसा बताए पुजारी ने वैसा ही बनाया, लेकिन लड्डू बड़ा कड़क बना। उनके मन में प्रश्न उठा कि मैं भोग लगाऊं कि नहीं, लेकिन कहा कि जगन्नाथ जी स्वयं आए हैं, भोग लगाएंगे। भोग लगा दिया। भोग लगाने के पश्चात उस दिन राजा दर्शन के लिए आए, तो पांडा ने उठाकर राजा को दे दिया वो। तो राजा ने वो लड्डू को लिया, और जैसे ही राजा ने लड्डू को चबाया दांत टूटने लगा। तो राजा पांडा को बुला के बोले, ये क्या तुम जगन्नाथ को खिला रहा है, ये लड्डू है कि लोहे का टुकड़ा है? वो बोले, भैया जगन्नाथ जी ने मेरे को जैसे बताया वैसे बनाया मैंने। राजा बोले, अरे नालायक, कुछ भी उल्टा बना के बोलता है जगन्नाथ जी के नाम पे, ठीक से बनाओ, इसका चूरा चूरा करो, नहीं तो हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे, आपको दंडित कर देंगे। उसी रात्रि को जगन्नाथ जी राजा के स्वप्न में आए। राजा के स्वप्न में आकर बोले, अरे मैंने जो पांडा को रेसिपी दिया था उसके आधार पर उसने लड्डू बना के भोग लगाकर महाप्रसाद तुमको खिलाया, तुमने उसको अपमानित किया। और राजा सपने में ही अपनी गवाही दे रहे हैं, साक्षी दे रहे हैं, बोल रहे, भैया लेकिन मैं क्या करूं, इतना कड़क था, आपका विचार करते हुए मैंने कहा कि ये ठीक नहीं है। तो जगन्नाथ जी ने स्वप्न में ही नरसिंह देव का रूप ले लिया और कहा कि इस लड्डू को खाने के लिए मैं नरसिंह देव का रूप लेकर खाऊंगा, इस लड्डू का नाम होगा नरसिंह लड्डू। तो इसलिए जगन्नाथ जी को आज भी वो लड्डू खिलाया जाता है, लेकिन जब हम लोग जाते हैं लेने के लिए उसको चूरा करके हमको देते हैं, इसलिए आपको यथारूप आपको दिखेगा नहीं। तो इसलिए भगवान जगन्नाथ नरसिंह देव को नरसिंहदेव से अभिन्न है और नरसिंहदेव आकर उस कड़क लड्डू को स्वीकार करते हैं, और वैसे ही नरसिंहदेव जी ने हिरण्यकश्यपु के कड़क वक्षस्थल को समाप्त किया। हिरण्यकशी पूर्वक्षः शील टंका न कालाये, हिरण्यकश्यपु का जो वक्षस्थल था वो एक शिला की भांति, पत्थर की भांति कड़क था, सशक्त था, उसमें लकीर खींचना भी बड़ा कठिन था। और तब भगवान नरसिंहदेव ने देखा कि हिरण्यकश्यपु ने चुनौती दी है कि मुझे दिन में नहीं, रात में नहीं, बाहर नहीं, अंदर नहीं, ऊपर नहीं, नीचे नहीं, किसी प्रकार के जीवित मृत व्यक्ति के द्वारा, वस्तु के द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता। तो भगवान नरसिंहदेव ने हिरण्यकश्यपु को अपने गोद में बिठाया और उनके वक्षस्थल पर अपने सुंदर नख को रख के, जो कि जीवित भी नहीं और मृत भी नहीं, और उसको भेद डाला और हिरण्यकश्यपु को समाप्त किया। तो इसलिए हिरण्यकश्यपु ने पूछा था कि नांतर बहिर दिवानक्तम अन्यस्मात् अपि चायुधै न भूमौ नाम्बरे मृत्युर् न नरैर् न मृगैरपि, कि हर परिस्थिति में मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। यस्त्वया मंदभाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वर क्वासो यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभेन दृश्यते। हिरण्यकश्यपु ने चुनौती दिया प्रहलाद को कि मेरे होते हुए और किसी व्यक्ति को आप सम्मानित कैसे कर सकते हो। इसलिए हिरण्यकश्यपु अभिमान या मिथ्या अहंकार के प्रतीक हैं। हिरण्यकश्यपु अहंकार के प्रतीक हैं और इस अहंकार को नष्ट करने के लिए भगवान नरसिंहदेव प्रकट हुए और अपने नाखून से, नखों से उनके छाती को भेद डाले। ये अहंकार इतना शक्तिशाली तत्व है कि इस अहंकार को घर के बाहर नष्ट नहीं किया जा सकता, घर के अंदर अहंकार नष्ट नहीं होता, आसमान में धरती में अहंकार का नाश संभव नहीं, किसी भी जीवित और मृत व्यक्ति के द्वारा ये अहंकार नष्ट नहीं किया जा सकता। दिन में या रात में अहंकार निरंतर प्रज्वलित रहता है। इस अहंकार को दमन करने के लिए केवल भगवान नरसिंहदेव आकर ही इसका नाश कर सकते हैं। इसलिए भगवान नरसिंहदेव से हम लोग प्रार्थना करते हैं कि वो आकर हमारे इस अहंकार और अभिमान को नष्ट करें। और वो शक्ति जो नरसिंहदेव भगवान के नखों में थी, वही शक्ति भगवान के भक्तों के जिह्वा के अग्रभाग में होती है, जो आदेश करते हैं और उन आदेशों को पालन करके हम अपने अहंकार से मुक्त होते हैं। इसलिए महाप्रभु ने कहा है, गोपी भरतुर पद कमलोर दास दास दासानुदास। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, कीर्तनिया सदा हरि, अर्थात हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि निरंतर क्षण क्षण इस भयंकर अहंकार रूपी विषधर भुजंग को निरंतर हम दमन करें। कैसे? मन में वैष्णवों का दास बनकर सेवा करने की अभिलाषा 24 घंटे चले। इसलिए कीर्तनिया सदा हरि, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब हम निरंतर ऐसा कीर्तन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो इस हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से ये केवल कोई हम औपचारिकता मात्र के लिए शब्द ध्वनि प्रतिध्वनित नहीं कर रहे, ये वास्तव में क्षण क्षण हम अपने मन में नियमित रूप से विचारशील मननशील हैं कि मैं सेवक हूं, सेवक हूं, सेवक हूं, मैं सेवक हूं। ये चेतना भगवान नरसिंहदेव के नाखून के बराबर शक्ति रखने वाला शस्त्र है, जो हमारे अहंकार को क्षण क्षण भेद कर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को उद्दीप्त करेगा। जिस क्षण हम भूल गए कि मैं सेवक हूं, तब वही हिरण्यकश्यपु का अहंकार फिर ऊपर उठ खड़ा होगा और हम लोग उसके वशीभूत आ जाएंगे। इसलिए श्री प्रभुपाद जी ने हम लोगों के लिए तीन बड़ा सरल उपाय दिया है, कृष्ण नाम, कृष्ण कथा और कृष्ण प्रसाद। क्योंकि ये तीनों के माध्यम से हम अपनी चेतना को शुद्ध करके सेवक के भावना को और तीव्र कर पाते हैं। हम लोग दक्षिण भारत की यात्रा में थे, हम लोग ने सब प्रसादम की व्यवस्था कर ली थी, तब अचानक वहाँ पर एक पुलिस की गाड़ी आ गई और जो ट्रैफिक के कोई ऑफिसर थे वो उतर गए और मुझसे पूछने लगे, सारे बसों का परमिशन कहाँ है दिखाओ। तो मैंने कहा बसों का परमिशन है, वो सब आ रहे हैं, बस अभी लगभग 15 मिनट में आएंगे, उसके बाद दिखाता हूँ। बोलते नहीं नहीं अभी दिखाओ, नहीं तो बंद कर दूंगा। तो मैंने कहा अभी परमिशन तो नहीं दिखा सकता, लेकिन ये मूंग दाल का पायसम है, इसको खाओ। तो गरम गरम मूंग दाल पायसम बना था, घी उसमें तैर रहा था और काजू और किशमिश ऊपर थे, उसको लाकर उनको दिया। वो कहते ये क्या है, मैंने कहा प्रसाद है, परमिशन बाद में आएगा, पहले प्रसाद तो लीजिए। तो उसने मना करते करते एक द्रोण पायसम पी गया, एक द्रोण पीने के बाद बोलता है एक और देना, फिर एक और द्रोण दिया, ऐसा 5 द्रोण पीने के बाद बोला एक मिनट आता हूँ। अपनी गाड़ी में गया, अंदर से स्टेनलेस स्टील का एक डब्बा लेके आया, बोला इसको भी थोड़ा भर देना, घर पे लेके जाऊँगा, और ठीक है परमिशन जब आ जाएगा बाद में भेज देना, और ऐसा प्रसाद बांटते रहोगे तो हर साल आना यात्रा के लिए। तो इसलिए प्रभुपाद बोलते थे कि भजन में किसी की रुचि हो ना हो, लेकिन भोजन में तो सबकी रुचि है। एक नवयुवक को मैं प्रसाद दे रहा था, वो प्रसाद देखते ही बोलता है नहीं लूंगा नहीं लूंगा। मतलब पागल हो गया क्या, पहला व्यक्ति देखा जो प्रसाद मना कर रहा है। क्यों मना कर रहा है, वो कहता है प्रसाद लूंगा तो मेरा भी हेयर स्टाइल आपके जैसा हो जाएगा। लोगों को घबराहट होती है, लेकिन महाप्रभु कहते हैं ऐछे अन्न ये कृष्णा के कराए भोजन, जन्मे जन्मे शिरे धरो तहार चरण। यहाँ पर कई लोग आकर बैठे हैं, पता नहीं कौन अपने घर पर भोग लगाते नहीं लगाते, लेकिन जो नहीं लगाते हो याद रखना, जो घर पर भोग लगाकर भगवान का प्रसाद अवशेष पाएगा, महाप्रभु कहते हैं कि जो भगवान को भोग लगाए जन्मे जन्मे शिरे धरो तहार चरण, जन्म जन्मांतर के लिए मैं आपके चरणों को अपने मस्तक पर धारण करता हूँ। महाप्रभु इतना कृतज्ञता व्यक्त करते हैं ऐसे भक्त के प्रति। और इसलिए आगे कहा गया है इतो नरसिंहो परतो नरसिंहो, यतो यतो यामी ततो नरसिंहो। जहां आप देखो भगवान श्री नरसिंह देव ही दिखेंगे। यतो यतो यामी ततो नरसिंहो, भगवान सर्वत्र विद्यमान है, इसलिए भगवान की इच्छा के बाहर इस जगत में कुछ नहीं। तो इसलिए जब हम आते हैं और विग्रह का दर्शन करते हैं, आज आप लोगों ने भगवान वृंदावन बिहारी के ऊपर सुंदर चंदन का दर्शन देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा होगा अवश्य दर्शन करके जाना, और दिखने में आपको लगेगा वो वस्त्र है, वो वस्त्र नहीं है चंदन है, पूरे चंदन के साथ रंग मिलाकर भगवान को अभिषेक उसका आभूषण किया गया है। तो वास्तव में जब भगवान का हम दर्शन करते हैं, लेकिन भगवान के दर्शन के साथ साथ भगवान कहना चाहते हैं ये तो एक दर्शन हुआ, लेकिन आप लोग मंदिर में आकर सत्संग में कथा सुनकर क्या दर्शन करना चाहते हो कि मेरे जीवन में जो कोई भी उचित और अनुचित घटना घटे उसके पीछे मैं भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर सकूं, मैं समझ सकूं कि इसके पीछे कृष्ण का ही हस्ताक्षेप है। और जब प्रहलाद महाराज के ऊपर हिरण्यकश्यपु अलग अलग प्रकार से अत्याचार कर रहे थे तो प्रहलाद महाराज क्या देख रहे थे, हाथी नहीं देख रहे थे, विषधर भुजंग नहीं देख रहे थे, विष से भरे हुए भोजन को नहीं देख रहे थे, अग्नि को नहीं देख रहे थे, बड़े बड़े पर्वती चट्टान जो उनके ऊपर आकर गिरे उसे नहीं देख रहे थे, इन सब के पीछे वो देख रहे थे कि भगवान अपनी इच्छा से मुझे अपने स्मरण करने का एक ज्वलंत अवसर दे रहे हैं, इस अवसर को देख रहे थे। और इस दर्शन को पाने के लिए आप लोग यहाँ पर मंदिर आते हो कि चाहे जीवन में संपत्ति आए या विपत्ति आए, मैं निरंतर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर सकूं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक पुरुष और स्त्री में बड़ा प्रेम था, और फिर कुछ समय के पश्चात दोनों में युद्ध छिड़ गया, मतभेद हो गया, होता ही रहता है। तो दोनों बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड थे, अमेरिका के स्काईस्क्रेपर बिल्डिंग के ऊपर उनका झगड़ा चल रहा था और घमासान इतना हो गया, बाताबाती इतनी हो गई कि फाइनली दोनों ने निश्चय किया अभी हम लोग एक दूसरे के साथ संबंध समाप्त करेंगे। तो ऐसा कह के वो लड़का वहां से निकल गया। वो लड़का निकल गया और लड़की होटल के वही 72वें फ्लोर 72nd फ्लोर के अपार्टमेंट में रुकी थी, होटल के रूम में। और उसको इतनी वेदना हुई लड़की को, वो बोले यार ये पूरा अपना संबंध समाप्त हो गया, अब मेरे जीने की कोई अभिलाषा नहीं। ये सोचकर वो खिड़की के पास गई और 72nd फ्लोर से उसने छलांग लगाया। और जिस समय छलांग लगाकर वो नीचे गिरी, तभी उसका बॉयफ्रेंड नीचे से बाहर निकला, सीधा उसके ऊपर गिरी, आदमी मर गया, वो बच गई। भगवान की इच्छा क्या है इसको हम समझ नहीं सकते। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, तोमार सेवाए दुख होयत सेतो परम सुख, सेवा सुख दुख परम संपदा नाशय अविद्या दुख। तो रावण बड़ा ही परेशान होकर अपने एक नीचे के लोकों में उनके अनुयायी के पास गए, मही रावण के पास, और बोले मुझे बहुत प्रचुर मात्रा में सोना चाहिए क्योंकि युद्ध लंबे समय तक चलेगा। तो मही रावण रावण को लेके आए और बोले ये देखो इतना बड़ा सोने का ढेला दिखता है क्या? तो रावण ने देखा कि एक बहुत विशाल का ये सोने का ढेला है, कई किलोमीटर बड़ा और सॉलिड सोना, विशाल और गोलाकार। तो रावण को बोले मही रावण उठा लो इसको, इस सोने को पिघलाकर भविष्य के लिए जितना लंका के लिए सोना चाहिए लेके जा सकते हो। तो रावण बहुत प्रसन्न हो गए और गए और सोने के ढेले को उठाने का प्रयास किया, हिलता ही नहीं था। और फिर कसरत किया, वो हिला ही नहीं, पसीना पसीना हो गया। रावण गुस्से में मही रावण को बोलने लगे, ये ऐसा सोना है कौन सा जिसको मैं नहीं हिला पा रहा हूं? मही रावण बोले, भैया देखो तुम तो अभी त्रेता युग में हुए हो रावण, लेकिन पिछले युग में सत युग में जैसे आपके सामने अभी रामचंद्र हैं, वैसे भगवान नरसिंहदेव हुए थे। और वो नरसिंहदेव बड़े क्रोधावेश में आकर हिरण्यकशिपु, जो कि आपके पहले अवतार थे, हिरण्यकशिपु को अपने गोद में बिठाकर उसको समाप्त किया था क्षण भर में। और ये जो सोने का ढेला तुमको दिख रहा है, ये हिरण्यकशिपु के कान की बाली है और इसको तुम हिला नहीं पा रहे, और तुम सोच रहे हो कि उसी रामचंद्र के साथ युद्ध करोगे? 10 सर पाए हो, अक्ल है क्या अंदर? इसलिए थोड़ा जागो और वापस जाओ और सीता को छोड़ दो, ये तुम्हारे भाग्य में नहीं। तो इसलिए भगवान नरसिंहदेव सर्वत्र विद्यमान है। और यतो यतो यामी ततो नरसिंहो, बाहे नरसिंहो हृदये नरसिंहो, नरसिंह अदीम शरणम प्रपद्ये। भगवान नरसिंहदेव सर्वत्र विद्यमान है, भक्त के लिए सर्वाधिक जो आवश्यक होगा उसके अनुसार भगवान प्रकट होते हैं, भक्त को संरक्षण प्रदान करते हैं, हर प्रकार से उनकी सहायता करते हैं। और इसलिए नरसिंह चतुर्दशी के दिन हम लोग जब भगवान नरसिंहदेव का अभिषेक करके उनकी आरती में उनसे प्रार्थना करते हैं कि आपने जिस प्रकार प्रहलाद महाराज को संरक्षण दिया, उनको उनके भौतिक शरीर का संरक्षण तो दिया ही, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उनकी चेतना को, उनके विचारों को जो संरक्षण प्रदान किया, वैसा संरक्षण आप हमें प्रदान कीजिए। क्योंकि भगवान भक्त वत्सल हैं और भक्त की इच्छा के वशीभूत आ जाते हैं। तो जब महाभारत में दुर्योधन सहदेव के पास गए, बोले सहदेव तुम तो बहुत बड़े ज्योतिषी हो, बताओ हम लोग क्या करें जिससे जीत जाए। सहदेव ने कहा, अमावस के दिन आप काल बल यज्ञ करो, जीत जाओगे। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हो गया। अगला दिन अमावस था, काल बल यज्ञ की तैयारी स्टार्ट कर दिया। कृष्ण बड़े परेशान, बोले पांडव घड़ी घड़ी कुछ ना कुछ घोटाला करते रहते हैं, इतना मैं प्रयास कर रहा हूं उनको बचाने का। तो कृष्ण कुछ ब्राह्मणों को जुटाए और अमावस के एक दिन पहले पितरों का तर्पण करना आरंभ कर दिए। ब्राह्मण भी कंफ्यूज हो गए, बोले पितरों का तर्पण तो अमावस के दिन होता है, कृष्ण अमावस के एक दिन पहले पितरों का तर्पण क्यों करवा रहे हैं। किसी दूसरे ब्राह्मण ने कहा भैया कृष्ण है, जो चाहिए करेंगे, उनका मूड है। एक और ब्राह्मण ने कहा जो भी हो दक्षिणा तो मिलेगी ना, करते रहो। तो तर्पण चलता रहा, लेकिन ऊपर दो लोग भ्रमित थे, सूर्य और चंद्र। सूर्य ने चंद्र को पूछा, अरे चंद्र भैया अमावस कब है? चंद्र ने कहा मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से तो कल है। तो सूर्य ने कहा आज ये तर्पण क्यों कर रहे हैं? चंद्र ने कहा शायद कोई गलत पंचांग मिल गया होगा। तो जाते हम लोग समझाने के लिए, सूर्य और चंद्र नीचे उतरे, भगवान को बोले प्रभो आप थोड़ा इधर आइए, कुछ आपको बोलना है, बहुत महत्वपूर्ण सूचना देनी है। कृष्ण आए तो चंद्र ने कहा कि हमारे हिसाब से तो अमावस कल है और आप आज तर्पण कर रहे हो पितरों का, तो कल का अमावस होते हुए आज क्यों कर रहे हो? कृष्ण ने कहा देखो भाई अमावस का हिसाब क्या है, जब सूर्य और चंद्र एक लाइन में खड़े रहे वो अमावस है, आप दोनों लाइन में खड़े हो, आज ही अमावस हो गया मेरे लिए। तो कृष्ण ने तुरंत पांडवों को बुलाया और बोला आज ही ये काल बलि यज्ञ संपन्न करो। उसी दिन यज्ञ हो गया और दुर्योधन पंचांग के हिसाब से अगले दिन करते बैठा, उसको पता भी नहीं कि पहले ही मैच फिक्सिंग हो गया था। भगवान श्री कृष्ण आकर सब कुछ हेरा फेरी कर चुके थे। इसलिए यहाँ पर हिरण्यकश्यपु को भी पूर्ण विश्वास था कि ब्रह्मा जी ने इतने वरदान दिए, कौन बाल बांका कर सकता है। लेकिन उसको पता नहीं था कि भगवान अपने भक्तों को संरक्षण करने के लिए कितने चिंतित रहते हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए ऐसा नर और सिंह का रूप लेके प्रकट हुए। उनके रूप का दर्शन करके हमको सोचना चाहिए, वैष्णव सेवा के लिए भगवान इतने चिंतित हैं तो मैं क्यों चिंतित नहीं हूं, और मैं उसकी उपेक्षा क्यों कर रहा हूं। और इस भावना को मन में रख के हम भगवान नरसिंहदेव से प्रार्थना करें कि हम भी भगवान और वैष्णवों की सेवा और उनको संतुष्ट करने के लिए निरंतर क्रियान्वित रहें, संतुष्ट करने के लिए प्रयत्नशील रहें, और हमेशा इस बात का विश्वास रहे सेवा करते समय भले कितने ही कष्ट क्यों न हो, लेकिन अंत में भगवान की मुस्कान और भगवान का संतोष और भगवान के धाम में नित्य प्रवेश और सेवा का अवसर, ये वास्तविक पुरस्कार है। चौपाटी में जब बड़े बड़े फेस्टिवलों में, और यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, जब फेस्टिवल में लंबी लाइन लगती है तो हो सकता है आपको चिंता लगी होगी कि अपने को मिलेगा क्या प्रसाद, कितना माल बनाया होगा आज। लेकिन उससे ज़्यादा चिंता बांटने वाले को होती है और वो कम मात्रा में बांटने लगता है, ये सोचकर कि थोड़ा मैं अपने लिए बचाऊंगा। तो उसको देखकर लोग आकर कंप्लेन करते हैं कि अरे समझाओ अपने सर्वर को, सब्जी चटनी की तरह दे रहा है। तो उसके भय को दूर करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए प्लेट बनाओ, प्लेट बनाकर मैं उनके सामने रख देता हूँ नीचे, सर्विंग करते करते अगर शंका हो प्लेट को देख लेते हैं कि सेवा करता रहूंगा तो भविष्य उज्जवल है। उसके बाद फिर ऐसा जबरदस्त डबल ट्रिपल देने लगते हैं, मुक्त हस्त दान देने लगते हैं, इतना लोगों के प्लेट में गिरने लगता है, वो कहते हैं भैया इतना क्यों दे रहा है, थोड़ा अपने लिए भी बचा ले, और वो कहता है वैष्णव सेवा ही धर्म है। अब सोचो इतना विश्वास कहाँ से आ गया अचानक, क्योंकि वो देखते हैं कि अगर इस पथ पर मैं चलता चला जाऊं तो भविष्य में भगवान मेरा संरक्षण गारंटी करते हैं। इसलिए आज नरसिंह चतुर्दशी के दिन हम भगवान नरसिंहदेव से यही प्रार्थना करें कि जिस आत्मविश्वास के साथ प्रहलाद महाराज ने उनकी सेवा की, उनका चिंतन किया, हर प्रकार के हर्ष और विषाद की परिस्थिति में भगवान का चिंतन करते हुए इस बात को प्रमाणित किया कि मनुष्य जीवन में वास्तविक करोड़पति वो है जो क्षण क्षण भगवान का चिंतन कर सके, हर प्रकार के विपरीत परिस्थितियों में भी जो भगवान के चिंतन को अपने मन से दूर न कर सके वो वास्तव में करोड़पति है और हम प्रहलाद महाराज जैसे महाजन करोड़पतियों के चरण चिन्हों में चलते हुए अपने जीवन में भी इस प्रकार की चेतना की अभिलाषा करते हुए कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के चरणों में अपना मस्तक झुकाते हुए प्रार्थना करते हैं कि जैसे उन्होंने शिला सरस्वती ठाकुर और आचार्यों की इच्छा को पूर्ण करके पूरे विश्व भर में हरिनाम संकीर्तन के आंदोलन की जय पताका फहराई, वैसे हम भी महाप्रभु और उनके अनुयायियों के अलग अलग भावनाओं को अपने हृदय में धारण कर अपने जीवन में उसको उतारें और लोगों में कृष्ण भावना का प्रचंड रूप से प्रचार करें और उसमें आने वाली बाधाओं से मुक्त होने के लिए भगवान नरसिंहदेव से प्रार्थना करें कि हमें भी प्रहलाद महाराज जैसी चेतना प्रदान करें। इन शब्दों के साथ आप सब यहाँ पर आए हुए सभी भक्तों को पुनः अभिवादन और आज के इस फेस्टिवल को, उत्सव को संपन्न सफल बनाने के लिए जिन लोगों ने भरपूर प्रयत्न किया उन सभी को भूरी भूरी धन्यवाद। इन शब्दों के साथ कथा को मैं ही विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।